تفسیر سورة النور آیت نمبر 41 سے اللہ رب العزت نے ایمان باللہ کی دعوت دی ہے. پچھلی آیات میں آپ نے ایمان اور کفر جو ہے اس کا فرق سمجھا, اور اب کائنات کی طرف توجہ دلا کر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان لانے کی اطاعت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. بڑا ہی زبردست انداز ہے, سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرنے والا, غور و فکر کی دعوت دینے والا. الم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ لم جو ہے یہ نہیں کے معنی دیتا ہے اور فعل مضارے کے ساتھ آتا ہے, اور ترا جو ہے اس کے بعد یا بھی تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. الم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور یہاں پہ اصل میں جو دیکھنا لفظ ہے یہ غور و فکر کی دعوت کے معنی میں ہے. کیا تو نے غور نہیں کیا؟ کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا؟ ان اللہ, کہ اللہ کے لیے, یسبحو, تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے. کون؟ آپ دیکھیں پھر لہو آ گیا. لہو جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اسی کی, اللہ کی. کون؟ من, جو کوئی, فی السماواتی والارضی, جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وطیرو, اور پرندے. صافات, پر پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاته وتسبیحه. کل, سب, یہ سب جو ہیں, علما, انہیں معلوم ہے, یہ باخبر ہے, یہ جانتے ہیں. صلاتہ, اپنی نماز. وتسبیحا, اور اپنی تسبیح کا طریقہ. واللہ علیم بما یفعلون. واللہ علیم, اور اللہ جانتا ہے, اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. بما یفعلون, جو کچھ یہ کرتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر آن اپنے رب کے آگے مطیع رہتی ہے, اپنی زبان سے, اپنی حرکات سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت بیان کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات, وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. اور السماوات تو جمع ہے, الارض اسم جنس ہے, یہ بھی جمع کے معنی دے رہا ہے. الطیر جو ہے یہ بھی اسم جنس ہے, اور یہاں پہ صافات جو ہے یہ استعمال ہوا ہے, اور صافات جو ہے یہ صف سے ہے. جیسے ویسے تو اس کے معنی کیا ہے کہ صف باندھ کر, یہاں پہ یہ باسی طواطین کے معنی میں ہے. جیسے بساتا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلانا, کہ پرندے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرتی ہیں, اور خاص طور پر جو ہے وہ پرندوں کا ذکر کیا, کیونکہ پرندے جو ہیں یہ اڑنے والی مخلوق ہے اور باقی جو حیوان ہیں وہ زمین پر چلنے والے ہیں. تو اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ کی جو بادشاہت ہے, اللہ کا جو اقتدار ہے, وہ جانوروں پر بھی ہے, وہ انسانوں پر بھی ہے, وہ جنوں پر بھی ہے, وہ فرشتوں پر بھی ہے, اور وہ پرندوں پر بھی ہے. تو کائنات کی ہر چیز اپنے عمل سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, خواہ وہ آسمان و زمین ہے یا شمس و قمر ہے, دریا اور پہاڑ ہیں یا اس کے سارے چرند اور پرند ہیں. تو خاص طور پر وہ طیر صافات, کے پرندے فضا میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے جو ہے وہ نظارہ کیا ہو, اور کبھی آپ نے دیکھا ہو कि परिंदे जो हैं एक बकायदा क्यू में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, एक सफ में होते हैं, और उसके साथ जो है वो उड़ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लीड कर, उनमें परिंदों में भी जो है वो आप देखें कि कुछ आगे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं परिंदे, और फिर क्या होता है कि जब वो थक जाते हैं तो पीछे आ जाते हैं, आगे जो पीछे वाले होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो ये परिंदे जो हैं इनके अंदर एक डिसिप्लिन है, और जब ये फिजा में उड़ते हैं तो ये उड़ने वाली मखलूक जो है ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इससे क्या बात पता चलती है कि ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि चिड़ियां जो फिजा में उड़ रही हैं वो भी अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं, और अल्लाह को उनकी तस्बीह का पता चलता है, अल्लाह हर एक की बात से वाकिफ है। आप पीछे पढ़ चुकी हैं सूरत बनी इसराइल में, आप पढ़ चुकी हैं आयत नंबर 44 में कि ला तफ्तहूना तस्बीहहुम वला किल्ला तफ्तहूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम इनकी तस्बीह और नमाज को नहीं समझते। फिर आपने सूरत हज आयत 18 में भी यही मजमून जो है वो पढ़ा है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उनमें से है, तो उसको जो है ये दावत दी जा रही है कि तुम भी अपने आप को अल्लाह के आगे जो है वो झुका दो। कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज और तस्बीह का तरीका मुख्तलिफ रखा है, हर एक के अलग अलग तरीके हैं, उन्होंने वो तरीके सीख लिए हैं और उसके मुताबिक वो अल्लाह की अताअत करते हैं। जैसे परिंदे चहचहाते हैं तो वो ये अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है वही अल्लाह की हम्द है, साए साए जो है वो ढलते हैं तो दरअसल वो अल्लाह की हम्द और तस्बीह जो है वो बयान करते हैं। तो हर एक की नमाज और तस्बीह का तरीका जो है वो उन्हें मालूम है। हजरत सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज, आसमान, जमीन, आफताब, महताब और कुल सैयारे और सितारे, जमीन के जो अनासिर हैं जैसे आग, पानी, मिट्टी, हवा, सबको खास काम के लिए पैदा किया है, उनके अपने काम है, और जिसको जो काम सौंपा है वो उस पर मसलसल लगा हुआ है, और वो अल्लाह की जर्रा बराबर जो है वो मुखालफत नहीं करता। तो ये जो सब चीजों की अतात है ना, ये दरअसल उनकी तस्बीह है। जैसे आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है और बहता है, हवाएं चलती हैं, और ये क्या है, ये दरअसल अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, और सूरज का तुलू होना, चांद का तुलू होना, और फिर इनका गुरूब होना, रात और दिन का आना जाना, ये क्या है, कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और ये सब कुछ जो करते हैं अल्लाह उनको जानता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वा इलल्लाहिल मसीर। अब यहां पर एक अहम हकीकत की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, और वो हकीकत क्या है कि ए इंसान तू भी ये सबक याद कर ले कि इबादत का असल हकदार सिर्फ वो अल्लाह है जो कि आसमानों जमीन का बादशाह है। जब हर चीज अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करती है तो फिर इंसान क्यों ना अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करें। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की बादशाही, आसमानों और जमीन का इक्तदार। तो हम कौन हैं, हम सब उसकी मलकियत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की जो है वो अताअत करनी चाहिए, और अताअत क्यों ना करें, वा इलल्लाहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है, फिर वापसी बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ होनी है। इस कायनात के निजाम में किसी का कोई दखल नहीं, और आखिरत में वहां पे भी किसी का कोई दखल नहीं होगा, यहां भी और वहां भी, हर जगह सारा इख्तियार और सारा इख्तदार अल्लाह ही को हासिल है। तो जब बादशाह अल्लाह, जब खालिक अल्लाह, जब मालिक अल्लाह, जब हाकिम अल्लाह, तो उसके सिवा किसी और की तस्बीह और इबादत क्यों कर हो सकती है। आयत नंबर 43, और यहां पे भी अल्लाह ताला ने एक और दलील बयान की है। पहले आपने پرندوں کے بارے میں اور آسمان اور زمین کے بارے میں پڑھا، اور اب جو ہے یہاں پہ بادل، بارش، اولے، بجلی کی چمک، اب اس کے بارے میں جو ہے وہ دلیل دی ہے. اور آیت نمبر 43 میں جو دلیل ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ کائنات میں سارا اختیار، سارا اقتدار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو کون آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ الم ترا، انسان کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے غور نہیں کیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ، یوز جی صحابن، یوز جی اس کا روٹ ہے زا جیم واو، اس کے معنی ہے کسی چیز کو دفع کرنا تاکہ وہ چل پڑے. جیسے سوار ہوتا ہے نا، وہ اونٹ کو چلاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ اونٹ کو ہانکتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو زا جیم واو، کسی کو آہستہ آہستہ نرمی سے چلانا. اور پھر یہ لفظ جو ہے یہ بادلوں کو چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر مالک جو ہے اپنے جانور کو چلاتا ہے، جیسے اونٹ کو وہ ہانکتا ہے، تو اس کے لیے بھی. تو بادلوں کو کون ہانکتے ہیں؟ بادلوں کو ہوائیں جو ہیں وہ چلاتی ہیں، ہانکتی ہیں. تو یہاں پہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ یوز جی جو ہے، پھر اس کے معنی کیا ہے؟ زا جیم واو، کہ اللہ جو ہے بے شک چلاتا ہے صحابن، بادلوں کو. اب آپ دیکھیے کہ بادل جو ہے اس کے لیے صحابن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. صحابن جو ہے سین ہا با اس کا روٹ ہے. آپ یہ پہلے بھی یہ لفظ جو ہے وہ پیچھے بھی صحابن کا آپ پڑھ چکی ہیں. اور اس کے معنی ہے، جیسے ویسے تو دیکھیں تو بادل کے لیے غمام لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، موسرات، سیبن، ہے نا، مزن لفظ بھی پڑھا ہے. تو صحاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سین ہا با اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا اور کھینچنا. ہر قسم کے بادل کو صحاب کہتے ہیں کیونکہ ہوائیں اسے کھینچتی ہیں، ہوائیں انہیں گھسیٹتی ہیں اور اٹھا کر آسمان پر پھیلا دیتی ہیں. اور ہر بادل کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ کھینچتے ہیں اور جو ہے پھر وہ گھسیٹے جاتے ہیں. تو یہ کہ اللہ جو ہے ہانگتا ہے صحابن، بادلوں کو، یعنی وہ گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں. ثم یؤلف، پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ملا دیتا ہے، جیسے کمپائل کرنا. حمزہ لام فا اس کے معنی ہوتے ہیں دو الگ الگ، جیسے بادل تو الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں نا، پھر لیکن اللہ ان کو جو ہے وہ ملا دیتا ہے، بے نہ ہو. اور با یا نون کے معنی ہوتے ہیں دو الگ الگ چیزوں کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ وہ بادل جو ہے جو الگ الگ ہوتے ہیں ملا دیتا ہے، بینہ ہوں ان کو آپس میں. ثم یجعلہ، پھر کر دیتا ہے ان کو رکامن. رکامن جو ہے اس کا روٹ ہے را کاف میم، اور اس کے معنی ڈھیر کے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ ڈھیر ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی ترتیب سے ایک کے اوپر ایک چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن را کاف میم جو ہے کسی نظم و ترتیب کے بغیر کسی چیز کو اوپر نیچے آگے پیچھے ساتھ ملا کر اکٹھا کر دینا، اس کے لیے رکامن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بادل جو ہیں وہ بغیر ترتیب کے ہوتے ہیں. صحاب مرکوم، یہ بادلوں کی صفت ہے. اور یہاں پہ بھی کیا ہے کہ بادل جو ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، ان کو تہ بر تہ بنا دیتا ہے. فطر الودقا، پس تو دیکھتا ہے بارش کو. وودع القاف، یہ بارش کو کہتے ہیں. اور اس سے مراد ایسی بارش ہوتی ہے جو لگاتار ہوتی ہے और अमूमन आहिस्ता आहिस्ता होती है, बहुत देर तक जारी रहती है, कभी तेज भी होती है। तो अल वदक का लफ्ज जो है ये बारिश और सख्त बारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर तुम देखते हो कि फिर बारिश को यखरुजु कि वो निकलती है, मिन खिलाले ही खा लाम लाम दरमियान से, और ही की जमीर बादलों के लिए आई है। फिर तुम देखते हो कि उन्हीं बादलों में से बारिश जो है वो निकलती है। अब आप देखें कि बेना पीछे आपने पढ़ा ये भी दरमियान है, लेकिन दो अलग अलग चीजों का दरमियान, लेकिन जो खिलाल है एक ही चीज के मुख्तलिफ अज्जा या दो ऐसी चीजों का दरमियान जिनका आपस में कुछ जो है वो ताल्लुक हो, जैसे दो दांतों के दरमियान, दांत आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इसके दरमियान आप खिलाल करते हैं ना। तो बहरहाल खिलाल जो है ये दरमियान के लिए आता है। तो यहां पे यहां तक एक बात हमारे सामने आई कि अल्लाह बादिल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, यूजी हांकता है उनको, क्योंकि अल्लाह हवाओं को हुक्म देता है, हवाएं जो है बादलों को हांकती हैं, सहाबन बादलों को, सुम्मा युअल्लिफू फिर उनको गडमट कर देती हैं, उनको आपस में मिला देती हैं, जोड़ देती हैं, बैनहू उनके दरमियान, सुम्मा यजअलुहू रुकामन फिर बादलों को ऊपर नीचे करती हैं। यानी फिर क्या होता है कि जब बादल के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं तो समेट कर उनको जो है बादलों को फिर वो तह बतह कर देती हैं। एक आप देखती हैं कि बारिश बरसने से पहले बादल यकजान हो जाते हैं, कसीफ अबर बन जाता है, तो यहाँ पे वही इशारा है कि तुम यजअलुहु रुकामन फिर जो है वो बादल जो है वो तह बतह हो जाते हैं, फतरल वदका और फिर तुम देखते हो कि बारिश के कतरे यखरुजु निकलते हैं, मिन खिलाले ही कि इसके खौल में से बारिश के कतरे टपकने शुरू हो जाते हैं। तो जब जमीन प्यासी होती है किसी की ताकत नहीं कि आसमान से पानी की एक बूंद टपका दे, वो अल्लाह हवाओं से बादलों को हांग कर लाता है, उनके अलग अलग टुकड़ों को बहम जोड़कर तह बरतह करता है, फिर इनसे अब्रे रहमत बरसाता है, सारी जमीन जलथल हो जाती है। तो ये क्या है, ये अल्लाह की रहमत है। फिर आप देखें, अब इसी बात को एक और अंदाज में कहा कि वह युनज़िलु मिनस समाई और वो नाजिल करता है आसमान में से, मिन जिबालिन उन पहाड़ों में से, फीहा इसमें, बरदिन ओले, फयुसीबु बिही मन यशाउ फिर जिसे चाहता है उन पर ये ओले जो है वो बरसा देता है, फयुसीबु पहुंचा देता है, बरसा देता है, बिही इन ओलों को, मैं यशाऊ जिसको वो चाहता है, वह यसरिफहु अम मैं यशा फिर जिसे चाहता है उससे हटा देता है। अब आप देखें कि यहां पर जो है ये जो असमा है, मुफस्सरीन कहते हैं कि एक मानी तो इसके आसमान ही के हैं, और दूसरी राय यह है कि सर्दी से जमे हुए बादल भी मुराद है। असमा जो है असल में सीन मीम वो हर उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज से ऊंची हो, जैसे पौधों के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आसमान चूंकि जमीन से ऊंचा है तो उसके लिए भी ये लफ्ज असमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, फिजा के लिए भी ये असमा का लफ्ज आता है। और एक राय ये है यहाँ पे कि असमा से मुराद बादल है, कि अल्लाह जो है वो बादलों से बरसाता है, क्योंकि सर्दी से जमे हुए बादल जो है उनको मजाजन आसमान के पहाड़ कहा गया है। فَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ तो जिबाल से मुराद क्या है कि आसमान के पहाड़। अब पहाड़ों पे क्या होता है, उनकी चोटियों पर बर्फ जमी हुई होती है, और बाज औकात ये जमी हुई बर्फ जो है ये जब हवा में शदीद सर्दी होती है तो जो बादल हैं वो उनमें भी वो जमना शुरू हो जाते हैं और ओलों की शक्ल में बारिश बरसनी शुरू होती है। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि बारिश, पहले कहा कि बारिश, अब यहां पे कहा कि ओले, तो ये जो ओले बरसते हैं इसका अमल बहुत बड़े और पहाड़ जैसे ऊंचे बादलों के जरिए जो है वो वजूद में आता है। तो ये कौन करता है? ये भी अल्लाह ही करता है कि इन्हीं बादलों से बारिश की बजाय फिर अल्लाह ताला ओले बरसाता है। और आपको अंदाजा ही है कि एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी जो है उसमें ये बात लिखी है कि बादलों से जब ओले बरसते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है वो 4.5 या 4.7 मील तक पहुंच जाती है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ है। तो जब ओले बादल के नीचे निचले हिस्से में गिरते हैं तो बादल में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। ओले जो है नेगेटिव चार्ज जो है उस पे हो जाते हैं। जब ये चार्ज बढ़ता है तो जमीन और बादल के दरमियान जो है एक लाइट शोला लपकता है। तो इससे पहले लोग ये समझते थे कि खुश्क हवाओं के बादलों से टकराने से जो है वो बिजली पैदा होती है, लेकिन अब क्या है कि अब इससे हटकर कि बादल में जब इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और ओले नेगेटिव तौर पर जब चार्ज हो जाते हैं तो ये चार्ज जब बढ़ जाता है तो जमीन और बादल के दरमियान जो है वो बिजली चमकती है, शोला लपकता है। तो अब यहाँ पर जो है एक तरफ बारिश के बारे में आपने पढ़ा, दूसरी तरफ ओलों के बारे में, और आपको कई दफा इत्तफाक हुआ होगा कि जब ओले गिरते हैं बड़े बड़े गाड़ियों में डंट पड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और नुकसान होता है और बड़ी तबाही मचती है। तो अल्लाह जिस पर चाहता है ओले बरसाता है, उनका नुकसान करता है, और जिसे चाहता है उनको उससे हटा लेता है। तो युसीबू, आप पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं, स्वाद वोबा, और इसके मानी है तीर का निशाने पर लगना। मुसीबत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसको चाहता है उन पे ओले गिराता है। वह यसरिफु, स्वाद राफा, हटाना। तो सराफा अन, यानी जिससे चाहता है ओले हटा देता है। तो ये क्या है, ये भी अल्लाह ताला की जो है वो एक इक्तदार की, अल्लाह के इक्तदार की एक शक्ल है कि कभी तो बारिश रहमत की है और कभी जो है उन्हीं से ओलों की शक्ल में, अजाब की शक्ल में जो है वो ओलों की बारिश हो रही है। तो ये रहमत और नकमत ये अकेला अल्लाह ही करता है, जिस पे चाहे वो करे। तो अल्लाह ने अपनी रहमत की मिसाल भी दी और अपने अजाब की मिसाल भी दी। फिर इसके बाद तीसरी बात के यकादु सना बरके ही यजबू बिल अबसार। यकादु, काफ व दाल इसका रूट है और इसके मानी है करीब है, करीब है के सना। और सना का लफ्ज जो है ये इसका रूट है सीन नून व, चमकने वाली बिजली को कहते हैं, जैसे कूदनी पड़ती बिजली की लिश्क, निगाहों को खीरा करने वाली रोशनी, उसके लिए सना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और करीब है कि चमक बरते ही बिजली की, यजबू उचक कर ले जाए, बिल अबसार आंखों को, तो उसकी बिजली की चमक निगाहों को खीरा किए देती है। इससे क्या बात पता चलती है कि ये जो शदीद कड़क है, दमक है, और ये जो बिजली चमकती है, तो इससे ऐसा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो निगाहें जो हैं, निगाहें खीरा हो जाए। तो ये भी क्या है कि ये भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है कि चाहे तो बिनाई जो है ना उसको अल्लाह ले जाए। पीछे आपने सूरत अल बकरा में भी इससे मिलता जुलता मजमून जो था वो पढ़ा था। तो ये करने वाला कौन है, ये इख्तियार किसके पास है, ये अल्लाह के पास है। तो रहमत भी अल्लाह के पास और अजाब भी अल्लाह के पास। तो असल में इक्तदार और इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है, बुतों का नहीं है, माबूदों का नहीं है। तो लोगों अपने आप को एक अल्लाह के आगे झुका दो। युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार इन फी ज़ालिका लइबरतल लिउलिल अबसार। युकल्लिबुल्लाहु, अब आप देखेंगे काफ लाम बा जो है इसके मानी होते हैं कल्ब के, और दिल को भी कहते हैं, और इसके साथ ही ये लफ्ज जो है ये बदलने के लिए, अदल बदल, तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है। तो युकल्लिबु, वो तब्दील करता है, वो उलट फेर करता है, कौन, अल्लाहु अल्लाह, किसका, अल्लैल वन नहार, रात का और दिन का। इसके मानी क्या है कि रात के बाद दिन का आना और दिन के बाद रात का लाना, ये भी अल्लाह के इख्तियार में है। किसी की ताकत नहीं कि रात में दिन जाहिर कर दे या दिन में रात नमूदार कर दे। एक मिनट और सेकंड का फर्क नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लि उलिल अबसार, इसमें जो है वो इबरत है उलिल अबसार आंखों वालों के लिए। और इबरत जो है ऐन बारा, इसके मानी होते हैं कि तय करना, अबूर करना। तो यहाँ पे इबरत के मानी है कि वो जहनी सफर जब आदमी एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचने के लिए करता है, यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य का लिंक करना, ताकि इंसान जो है फिर संभल जाए। और आप देख लें कि कभी रातें छोटी होती हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी रातें लंबी होती हैं, कभी दिन लंबे होते हैं। तो ये जो रात और दिन का आना जाना, रात का अंधेर होना, दिन का रोशन होना, और इसी तरह जो है वो ये जो कायनात के अंदर जो है ये जो तब्दीली है, तो ये करने वाला अल्लाह है। तो इससे इबरत क्या मिलती है? इससे इबरत ये मिलती है कि रात और दिन का आना जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि दुनिया में इंसान हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद एक दूसरी जिंदगी है जो आखिरत की जिंदगी है। जैसे रात का जोड़ा दिन है, इसी तरह दुनिया का जोड़ा जो है वो आखिरत है। और इससे क्या बात पता चलती है कि जिस तरह रात के अंधेरे में जो है वो एक फायदा है, इसमें एक निशानी है, इसी तरह दिन की रोशनी में भी। और जिस तरह दुनिया में एक निशानी है कि अल्लाह ने दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया, तो इसी तरह आखिरत के आने में भी एक फायदा है मालिक यौमिद्दीन, ताकि लोगों को उनके अमाल के मुताबिक जो है वो जजा या सजा जो है वो मिल सके। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 45 जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो मुख्तलिफ अकसाम की जो मखलूकात हैं, जो जानदार हैं, उनका जो है वो हवाला दिया है। अल्लाहु खलका कुल दाबतिन मिम्मा, और अल्लाह ने हर जानदार एक तरह के पानी से पैदा किया। अब आप देख लें कि दाबतिन, दाल बाबा, और इसके मानी है रींगने वाले, और मुराद क्या है कि जानदार। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया हर जानदार को, कुल्ला दाबतिन, हर जानदार, मिम्मा इन, पानी से, एक पानी, एक तरह के पानी से जो है वो तरह तरह के जानदार जो है वो पैदा किए। तो माइन जो है इसका रूट है मीम वोहा, और ये पानी को कहते हैं। फमिनहु मन यमशी अला बतनी, फिर इनमें से कोई तो पेट के बल चलता है। फमिनहु यानी इन जानदारों में से, इन दाबा में से मन कोई है यमशी चलता है, मीम शीन या मशा का मतलब होता है चलना। तो बाज ऐसे हैं जो चलते हैं, अला बतन ही, वा त्वा नून बतन पेट को कहते हैं, तो वो अपने पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप है, मछली है। मिनहु मन यमशी, और इनमें से कोई ऐसा भी है जो चलते हैं, अला रिजलैन, अपने दो पांव पर। रिजल रा के नीचे जेर हो जाए तो ये पांव को कहते हैं, और इसके ऊपर जो है वो फतह हो, जबर हो, तो ये इंसान को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। तो यहाँ पे रिजलैन, अपने दो पांव पर, और इससे मुराद है आदमी, तयूर, जैसे परिंदे हैं और इसी तरह इंसान है। तो ये क्या करते हैं, ये दो दो टांगों पर चलते हैं। वमिनहु मन यमशी, और फिर इनमें से कोई ऐसा भी है जो चलता है, अला अरबा, चार पर। और मुराद क्या है, जैसे हैवानात हैं, चुपाए हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। तो बाज हैवानात जो है वो क्या करते हैं कि वो चार उस पर जो है वो चलते हैं। तो ये सारे हैवानात, चुपाए वगैरह, इससे मुराद है। यखलुकुल्लाहु मा यशा, यखलुकु वो पैदा करता है, कौन, अल्लाहु, अल्लाह, मा यशा, जैसे वो चाहता है। तो जिस तरह चाहता है अल्लाह पैदा करता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो आयत का हिस्सा है ना, यखलुकुल्लाहु मा यशा, इसमें इशारा किया गया है इस बात की तरफ के बाज हैवान ऐसे हैं जो चार से भी ज्यादा पौ रखते हैं, जैसे मकड़ी, केकड़ा, जमीनी कीड़े वगैरह, तो आप देख लें कि वो जो है अनगिनत उनके जो है वो पौ होते हैं। ये कौन बनाता है? इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये भी जो निशानियां हैं ये सब क्या है? ये इस बात की दलील है एक पानी से मुख्तलिफ रंग, जिन्स, शक्ल और सूरतें जो है उसके जानवर, चरिंद, परिंद और फिर इंसान अल्लाह ने पैदा किए। तो जो मुशरिक थे उन्होंने ये समझा कि शायद मुख्तलिफ खुदाओं ने ये काम किया है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मेरी कुदरत है, ये मेरी हिकमत है कि एक ही पानी से तमाम जानदारों को वजूद बख्शा। तो जो रब ये सब कुछ करने पर कुदरत रखता है, तो ए लोगो तुम अपने आप को उसके हवाले कर दो, तुम उसी की बंदगी करो, तुम उसी की अताअत करो। आयत नंबर 46 सूरत अन्नूर, लकद अनजलना आयातिन मुबैनात, हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी हैं। आयात मुबैनात से मुराद कुरान मजीद की आयात हैं। पहले तो कायनात की जो आयात है, निशानियां हैं, उनसे गौर फिक्र की दावत दी, और अब जो है वो कुरान मजीद की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है कि हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और वो अल्लाह ही है जो हदायत देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम की तरफ, और मुराद है हदायत की तरफ, यानी हदायत का रास्ता जो है वो अल्लाह ही दिखाता है जिसे चाहता है, और किसे चाहता है, जो देखना चाहता है। और हदायत का रास्ता क्या है? जो कि इस्लाम का रास्ता है। तो जो सिरात मुस्तकीम चाहते हैं, जो इसके तलबगार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो है ये आसान कर देता है, राहें खोल देता है। और जो अपने ख्वाहिशात नफ्स की तारीकियों में भटकते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको महरूम कर देता है। तो अल्लाह उन्हीं को देता है जो खुद चाहते हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 47 से जो है ये मुनाफिकीन जो हैं, इनका तर्ज अमल जो है वो बयान किया जा रहा है, मुनाफिकीन का किरदार जो है वो सामने रखा जा रहा है। तो मुनाफिकीन के रवैये पर अल्लाह ताला तबसरा कर रहे हैं। प्यारी बहनों, यहां पे आप जरूर सोचें कि मैं कौन हूं, क्या मैं मुस्लिमा हूं, क्या मेरे कॉल और फेल में तजाद है, कंट्राडिक्शन है, क्या मेरे किरदार में जो है वो डबल फेस पाया जाता है, मैं क्या करती हूं, मैं क्या कहती हूं, मैं क्या दावे करती हूं। हर नमाज की हर रकत में आप कहती हैं ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, आप कहती हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन आप क्या करती हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व यकुलूना, और वो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिर रसूली, और रसूल पर, कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, व अताना, और हमने अतात कबूल कर ली, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादे जालिक, मगर इसके बाद इनमें से एक ग्रोह अतात से मुंह मोड़ लेता है। यानी दावा क्या किया कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर और हमने अतात कर ली, लेकिन रवैया और अमल कैसा है? सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादे जालिक, मगर इसके बाद इनमें से एक ग्रोह जो है वो अतात से मुंह मोड़ लेता है। यतवल्ला, यतवल्ला जो है इसका मानी होता है फिर जाना, फरीक एक ग्रोह, तो एक ग्रोह जो है वो अतात से फिर जाता है। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं ऐसे लोग हरगिज मोमिन नहीं है। कितना ही ये दावा करें कि हम ईमान लाने वाले हैं, हम अतात करने वाले हैं, लेकिन ये झूठे हैं। दावा ईमान की इनके अमल ने तरदीद कर दी। तो ये जो बातें करना है ना, ये बहुत आसान है, लेकिन अमल करना ये है असल बात। तो जो मुनाफिक होते हैं वो बातें बहुत करते हैं, वो दावे बहुत करते हैं, लेकिन जो सच्चे मुसलमान होते हैं, ऐसा होता है कि वो बातें नहीं करते, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो वो किरदार के गाजी बन जाते हैं। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जिस शख्स के दिल में गहराई के साथ अल्लाह उतरा हुआ होता है, जिसे जो है वो अपनी मौत का और आखरत का यकीन होता है, तो वो सच्चा ईमान लाता है। ईमान उसके दिल के अंदर गड़ा हुआ होता है, पहाड़ों की तरह अंदर गड़ा हुआ होता है, पहाड़ों की तरह उनका किरदार मजबूत बन जाता है, और अल्लाह के अहकामात के सामने उनकी निगाहें झुक जाती हैं, उनकी जबान बंद हो जाती है, उनका एहसास जिम्मेदारी उन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने पर तैयार कर देता है, लेकिन जबानी दावों के वक्त वो देखने वालों को गूंगे नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह से उनका इतना मजबूत ताल्लुक होता है कि उनका किरदार उनके अमल की गवाही देता है। वो बड़े बड़े अल्फाज का सहारा लेकर जो है वो दावे नहीं करते, वो अल्फाज का कमाल दिखाकर दूसरों को मुतासिर नहीं करते, उनका मामला उनके रब के साथ होता है, उनके सोचने और बोलने के और अमल करने के अंदाज बदल जाते हैं। जिन्होंने वफा मुस्तकिल चाहिए, जिन्होंने वफा मुस्तकिल चाहिए, जरा देर का दर्द सर कुछ नहीं। और अपना हाल तो क्या है, कभी सोचती हैं आप, कभी गौर करती हैं? इरादे बांधती हूँ सोचती हूँ तोड़ देती हूँ, इरादे बांधती हूँ सोचती हूँ तोड़ देती हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। और आप देख लें कि सूरत नूर के जो हैं वो अहकामात, जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि इनको मैंने फर्ज कर दिया, और अब उसके बाद जो है, अब मुनाफिकीन का किरदार कि जो आयात जो है मैंने नाजिल की, जो मैंने कहा कि तुम निगाहों को नीचा करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, और अपनी जेबो जीनत जो है वो गैर महरमों के सामने मत दिखाओ, पांव जमीन पर मारती भी मत चला करो, और जो है वो बहुत सी बातें पीछे आयात में आपने पढ़ी ना। तो असल बात क्या है, जलवों के इस हुजूम में लाजिम है एहतियात, जलवों के इस हुजूम में लाजिम है एहतियात, पहली नजर माफ है दूसरी नजर गुनाह। आपने कुछ बहनों ने अपने जो अमल के उसूल बताए थे, तो उन्होंने कहा था ना कि अब हम ख्याल रखेंगी, तो फिर असल बात क्या है, पहली नजर माफ है दूसरी नजर गुनाह। तो फिर अपनी नजरों पर, अपनी बातों पर, अपने कदमों पर तकवा के पहरे बिठाने हैं। लेकिन मुनाफिक क्या करता है, फम्मा यतवल्ला फरीकुम मिन्हुम मिन बादे ज़ालिक, सारी बातें करने के बाद, दावे करने के बाद, फिर इनमें से एक गुरु अतात से मुंह मोड़ जाता है। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ऐसे लोग हरगिज मोमिन नहीं है। वो कितना ईमान लाने का दावा करें, लेकिन अल्लाह और अल्लाह की रसूल की अतात के बगैर ईमान का दावा बेमानी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मुनाफिकीन की जो है वो क्या जो है उनका रवैया होता है, वाइजा दुरू, जब उनको बुलाया जाता है, इल्लाह व रसूल ही, अल्लाह और रसूल की तरफ, यानी कुरान की तरफ, रसूल की सीरत की तरफ, अहदीस और आपकी पैरवी की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे। इजा फरीकुम मिनहुम मुरीदून, तो इनमें से एक फरीक कतरा जाता है। तो प्यारी बहनों, इसके मानी क्या है कि ये जो आयत है ये किताब अल्लाह और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बताती है कि एक मोमिन की जिंदगी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरती है। वो अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत को जज मुकरर करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करता है। वो ये नहीं करता कि ये करूं, मेरा दिल चाहता है तो कर लूं और दिल चाहता है तो नहीं करूं, दोस्त ऐसे कह रहे हैं, पीयर प्रेशर है, खानदान वाले, तो वो क्या करते हैं, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। अब यहां पर ये जो आयत नंबर 48 है, यहां पे मुनाफिकीन का ये रवैया बताया जा रहा है कि रसूल अल्लाह की जिंदगी में मुनाफिक जो थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से कतराते थे। कब? जब किसी मुकदमे के फैसले की जरूरत हो तो वो रसूल अल्लाह के पास नहीं जाना चाहते थे। वो समझते थे कि रसूल अल्लाह का जो फैसला है वो हमारे खिलाफ होगा, तो क्यों ना यहूदियों के पास जाएं, क्यों ना दूसरों के पास जाएं। तो अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में जाते हुए कतराते थे। तो यहाँ पे जो है उनका किरदार हमारे सामने रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है आज के दौर के जो मुसलमान हैं इनके लिए भी ये पैगाम है कि अपनी जिंदगी में जब भी जरूरत पेश आए, कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई मामला, कोई भी बात, तो फिर क्या करना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना चाहिए, कुरान और सुन्नत को अपने लिए जो है वो जज मुकरर करना चाहिए। तो मुनाफिक क्या करते थे कि जब उनको यकीन होता था कि फैसला उनकी मर्जी का होगा फिर तो खुशी खुशी चले जाते थे, लेकिन जब उन्हें यकीन होता था कि नहीं, जो फैसला हमारे हक में नहीं होने वाला, हम गलती पर हैं, तो फिर वो रसूल अल्लाह की अदालत में जाने से कतराते थे। अब यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, फइन यकुल लहुमुल हक़ु, और अगर वो हो हक पर, और अगर वो हो लहुम इनके लिए अल हक़ु हक, यानी अगर हक इनकी मुआफ़क़त में हो, या तू इलेही, तो वो इसकी तरफ चले आते हैं, मुज़इनीन, ज़ाल ऐन नून इसका रूट है, और इसके मानी है किसी का मुती होना, किसी के इशारों पर चलना। ज़ाल ऐन नून के अंदर जो है वो दो बातें पाई जाती हैं, एक तो अतात करना, और उसके साथ अतात के साथ साथ आजजी और जिल्लत का पहलू। जैसे फर्मा बरदार ऊंटनी होती है ना, वो क्या करती है, वो अपने मालिक की, अपने सवार की मुती होती है, फर्मा बरदार होती है, और इतनी उसके अंदर आजजी पाई जाती है कि एक बच्चा भी अगर उसके लगाम को पकड़ ले, उसकी महार थाम ले, उसको खड़ा करे तो खड़ी हो जाती है, बिठा दे तो बैठ जाती है, बिल्कुल कोई छू और चरा नहीं करती। तो मुज़ऐनीन इसके मानी है अतात करने वाले, फर्मा बरदार, आसानी से इशारों पर चलने वाले। तो जब उनको लगता है कि अगर हम इस्लाम की तरफ जाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे, हमें फायदा मिलेगा, तो बड़े जो है वो मुज़ऐनीन बनकर आ जाते हैं, अतात केश बनकर आते हैं। काफी कुलूब ही मरदुन, क्या इनके दिलों में मुनाफ़त का रोग लगा हुआ है। तो यहाँ पे मर्द से मुराद जो है ये कुफ्र और निफाक का रोग है। अब यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि मुनाफिक के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। नंबर एक, इनके दिलों में मुनाफ़त का रोग, कुफर का रोग। नंबर दो, अमीर ताबू, या ये शक में पड़े हुए हैं। इरताबू जो है रा या बारैब, उससे है इरताबू। क्या ये शक में पड़े हुए हैं? शक किस चीज का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का शक, या फिर इस्लाम के फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में शक। उन्हें ये लगता था कि पता नहीं कि जो है वो इस्लाम जो है वो गालिब आएगा भी कि नहीं आएगा, तो रसूलुल्लाह की रिसालत पर शक करते थे, और वो डरते थे कि पता नहीं कि कल कुफर गालिब आता है या कि इस्लाम। तो हम जो है फिर कहा कि इरताबू, क्या इन्हें शक है? इसके बाद नंबर तीन, अम ये खाफूना, क्या इन्हें खौफ है? يحيف الله عليهم ورسوله ان يحيف کے ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسوله اور اس کا رسول. تو ان یحیفہ جو ہے اس کا روٹ ہے ہا یا فا, اس کے معنی ہے دوسرے کے حق کی ادائیگی میں جانبداری کرنا اور کمی کرنا, فیصلہ کرنے میں ایک جانب جھکنا, انصاف نہ کرنا. ظلم و جور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تیسری بات کیا ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ان پر ظلم کرے گا, یعنی اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی فکر رہتی تھی کہ اطاعت کرنے میں پھر ہم پر زیادتی نہ ہو جائے. فرمایا بل اولئک هم الظالمون, اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم جو یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں, ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. تو منافقانہ طرز عمل کی تین وجوہات سامنے رکھی گئیں, نمبر ایک کفر و نفاق, نمبر دو شک, اور نمبر تین جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ اگر قرآن و سنت پر چلیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہم پہ ظلم ہو جائے گا, ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے. تو یہ کون کرتے ہیں؟ یہ منافق کرتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کہیں یہ بیماریاں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 51 میں جو سچے مسلمان ہیں ان کی شان بتائی جا رہی ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے, انما کان قول المؤمنین, انما اس کے سوا نہیں, انما کلمہ حصر ہے, آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ انما بس پس کانا ہے قول مومنینا ایمان لانے والوں کا قول. یہ ایمان لانے والوں کا تو یہ جملہ ہوتا ہے, ان کا تو یہ کردار ہوتا ہے, ان کا تو یہ کام ہوتا ہے. اذا دو جب کبھی وہ بلائے جائیں, جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ و رسول ہی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, یحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں, حکم ہوتا ہے نا حاکم فیصلہ کرنے والا قاضی, تاکہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے. تو یہاں پہ فیصلے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی زندگی میں نرم اور گرم حالات تو پیش آتے رہتے ہیں نا, کبھی ذاتی مسائل, کبھی اجتماعی, کبھی شوہر کے, کبھی بیوی کے, کبھی درانی کے, کبھی جٹھانی کے, کبھی معیشت کے, کبھی معاشرت کے. وہ عملی زندگی میں مختلف جو ہے وہ حالات پیش آتے ہیں, مختلف معاملات پیش آتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اور اللہ اور رسول کا جو فیصلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے, اَن يَقُولُ تو یہ کہتے ہیں, نمبر ایک سمعنا ہم نے سن لیا, وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ اللہ اور رسول کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں. تو سچے مسلمانوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ سپردگی, سمینا و اطانا. وہ یہ نہیں کہتے کہ مشکل ہے یا سمجھ نہیں آ رہی, کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سمینا و اطانا. تو وہ سمینا و اطانا کی عملی تصویر بن جاتے ہیں. تو یہ ہے ایک سچے مسلمان کا کردار کہ وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں, وہ کردار کے غازی ہوتے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اللہ کی اطاعت سے مراد ہے قرآن کی پیروی, فرائض. مفسرین کہتے ہیں يُطِعِ اللَّهَ سے مراد فرائض ہے, رسولہ سے مراد سنت نبوی. وَيَخْشَ اللَّهَ نمبر تین اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے. یکشا جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف خشیت اور دوسری طرف ویتق ہے, تقوی کا ذکر ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں پہ آیت نمبر 52 میں चार बातें बताई गई हैं। नंबर एक, वह मैं युति इल्लाह, और जो अल्लाह की अतात करे, वह रसूल्लाह और उसके रसूल की, वह यक्षल्लाह और अल्लाह से डरे, वह यत्तक है और उसकी नाफरमानी से बचे, फाउलाइका हुमुल फाइजून। तो बस यही वो लोग हैं जो के कामयाब होने वाले हैं। फाइजून जो है ये कामयाबी का अगला दर्जा है, फौज, ऐसी कामयाबी जिसे देखकर इंसान जो है वो निहाल हो जाए, खुश हो जाए। तो अब आप देखिए कि यहां पर चार सिफात हैं, अल्लाह की अतात मुराद फराइज, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, रसूल की अतात यानी सुन्नत, सुन्नत का मताला करते हैं, सुन्नत को जानते हैं और फिर सुन्नत की पैरवी करते हैं। तो अब आप देखें कि वो सिर्फ समेना व अताना नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की अतात और अल्लाह के रसूल की अतात, व यख्शल्लाह खशियत, व यत्तके तकवा। मुफस्सरीन कहते हैं कि खशियत जो है इसका ताल्लुक दिल की हालत से है, और तकवा जो है इससे मुराद जो है वो हुदूद इलाही की पासदारी है, क्योंकि दिल के अंदर जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान क्या करता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। तो अतात के साथ साथ वो अल्लाह से डरते हैं और मुत्तकी बनते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो है वो सच्चे होते हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्या मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों के जमाने में एक शख्स जो था, एक रूमी देहाती, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों के सामने मस्जिद नबी में आया और कहने लगा कि अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदु रसूलुल्लाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों ने उससे पूछा कि क्या बात है, किस चीज ने तुझे जो है ये कलमा पढ़ने पर आमादा किया। उसने कहा कि बात यह है कि मैंने तौरात, इंजील, जबूर और अंबियाए साबिकीन की बहुत सी किताबें पढ़ी, मगर मैं एक मुसलमान कैदी को सुन रहा था कि वो कुरान की एक आयत पढ़ रहा था, और जब मैंने वो आयत सुनी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ कि छोटी सी आयत में तमाम कुतुब कदीमा जो है उसके मजामीन समो लिए गए हैं, मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो उसने जो है वो सूरत नूर की ये आयत नंबर 52 पढ़कर सुनाई, और उसके साथ उसने कहा कि मैं युति इल्लाह से मुराद फराइज इलाहिया है, रसूलहु से मुराद सुन्नत नबी, पर यख्शल्लाह से मुराद ये गुज़िश्ता उम्र के मुतल्लिक कि जो जिंदगी में वो कर चुका है उससे जो है वो डर रहा है, व यत्तक़ी से मुराद आइंदा जिंदगी के मुतल्लिक वो फिक्रमंद है। अब चार चीजों का जो शख्स आदि हो जाए कि पिछले का गम है और आइंदा की फिक्र लगी हुई है, उलाइका हुमुल फाइजून, तो ऐसे ही शख्स को खुशखबरी दी गई है कि वो जहन्नुम से निजात पाएगा और जन्नत जो है उसको ठिकाने के तौर पर मिलेगी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने ये सुनकर जो है फिर तस्दीक की, फाउलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग जो है वो कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन खुशकिस्मत लोगों में कर दे, और समेना व अपाना जो है ये हमारी पहचान बन जाए। फिर आप देखिए कि ये आयत नंबर 53 जो है इसमें भी जो है वो जो मुनाफिक है उसका एक और किरदार जो है वो बयान किया गया है कि मुनाफिक क्या करता है, वाक्समू बिल्लाही जहदा ऐमानहिम लइन अमरतहुम लयखरुजुन्ना। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। अब आप देखिए कि वह अक्समू का मानी क्या है, उन्होंने कस्में खाई, बा ये जो बिल्ला है ना इससे पहले आपको बा नजर आ रहा है, ये हर्फ कसम है, अक्समू वर्ब है, उन्होंने कस्में खाई, बा कसम अल्लाह ही अल्लाह की, तो उन्होंने अल्लाह के नाम की कस्में खाई। अब इतना ही काफी था ना, लेकिन जहदा ईमान ही फिर आ गया। जहदा जो है इसके मानी क्या है, जहद जो है ये जिद्दोजहद से है, जैसे इसके मानी होते हैं इंतहाई कोशिश। ये ताकीद के मानी में आया है यहां पे कि वो वुस्सत भर कस्में खाते हैं, पूरी कोशिश से कस्में खाते हैं, जितनी कस्में खा सकें। अब देखें ऐमानेहिम फिर तो ऐमान या मीम नून ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है ना। हालांकि अक्सर मुंह कह दिया था इतना ही काफी था, वह अक्सर मुंह और उन्होंने कस्में खाई, कस्में खाते हैं बिल्लाही अल्लाह की कसम, ज्यादा ईमानहीन सख्त सख्त अपनी कस्में। तो ज्यादा ईमानहीन जो है ये ताकीद के लिए आया है, बतौर ताकीद के। वुस्सत भर कस्में खाते हैं, इसका मतलब क्या है कि मुनाफिक जो है वो झूठी कस्मों के जरिए से दूसरों को धोखा देता है, खूब कस्में खाता है, खूब कस्में खाता है अल्लाह के नाम की, क्योंकि उसके दिल के अंदर चोर छुपा हुआ होता है ना, उसको यकीन होता है कि लोग मेरी बात पर एतबार नहीं करेंगे। जो साहिब किरदार होता है ना, लोगों को उसके किरदार पर एतमाद होता है, उसको कसम खाने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन मुनाफिक कसमें खाता है। और कसमें खा खा कर क्या करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे, लाइन अमरता हम, जब कभी आपका हुक्म होगा बस आप कहें हम हाजिर हैं, लया खुरुजुन्ना, हम जरूर ब जरूर निकलेंगे। लाम लामे ताकीद है, नून नूने ताकीद है। और वो कहते थे कि जब भी जिहाद का मौका आए बस आप हमें जरा बुलाएं, आप हमें हुक्म तो दें, देखें कैसे हम अपने घरों से निकल खड़े होते हैं। कुल्ला तुकसिमु, अल्लाह ताला कहते हैं इनसे कहो कस्में न खाओ। क्योंकि कस्में अमल का बदल नहीं बन सकती, तो असल चीज क्या मतलूब है, अल्लाह और उसके रसूल की अतात। लेकिन तुम खाली खौली कस्में खाकर अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देना चाहते हो। कुल्ला तुकसिमु, इनसे को कस्में ना खाओ। तुम मारूफा, इसके माने क्या है? तात जो है ये अतात को कहते हैं, और मारूफ जैसे जो जानी पहचानी। तो कस्में खाने की बजाय असल मतलूब क्या है, तातुम मारूफा, पसंदीदा फरमाबरदारी, ये चाहिए। कस्में नहीं चाहिए, अमल चाहिए। तो तातुम मारूफा, तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ये जोर लगाकर कस्में खाते हैं, तो इनसे कह दो कि कस्में ना खाओ। तो असल चीज क्या चाहिए, असल चीज तो जानी पहचानी अतात होनी चाहिए, बस अमल होना चाहिए ना। इन्नल्लाह खबीरु बिमा तामलून, और बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तुम्हारे करतूतों से जो है वो बेखबर है, यानी बेखबर नहीं है, बाखबर है। तो मानी क्या है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी फरमाबरदारी की हकीकत मालूम है, तुम्हारे अमाल की पूरी खबर रखता है। तो तातुम मारूफा, इसके माने ये हैं कि तुम्हारा मामला तो अताते मारूफा का होना चाहिए। और मारूफ में जो अतात होती है वो कौन करते हैं, मुसलमान करते हैं, वो तो कसमें नहीं खाते, अमल करते हैं। जैसे आपने सूरत तौबा में भी पढ़ा था, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है कि तुम्हारी जो फरेबकारियां हैं और तुम्हारी जो कस्में हैं झूठी कस्में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे ख्यालात से वाकिफ है। क्यों? वो खबीर है, वो खुले और छुपे सबकी खबर रखने वाला है। फिर आयत नंबर 54 में फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कहो अल्लाह के मुती बनो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान बनकर रहो। फाइन तवल्लो, बस अगर तुम मुंह मोड़ोगे, फाइन नमा अलैहि मा हुम्मिल, तो खूब समझ लो कि फाइन नमा, बस सिर्फ अलैहि, इस पर है। अलैहि की जमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है कि बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, मा हुम्मिला, जो बार उन पर डाला गया। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو فرض ان کو دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بار ڈالا گیا تھا؟ آپ جو تھے آپ کو دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم اطاعت نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا فرض ڈالا گیا ہے، جو نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو انہیں تو وہ ادا کرنی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّل، تو رسول پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَعَلَيْكُمْ اور تم پر ہے، مَا وہ ذمہ داری، حملت جو تم پر لاد دی گئی، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائے گا اور بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ تم اگر ایمان نہیں لاتے، اگر تم اطاعت نہیں کرتے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ رسول اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اگر تم اطاعت نہیں بھی کرو گے تو رسول جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا فرض ادا کرتا رہے گا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم اگر ایمان نہیں لاتے، تم اگر ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، تو تم اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہو۔ تو رسول کی ذمہ داری جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی ہے، اور آگے ایمان لانا یا نہ لانا یہ جو ہے یہ تمہارا طرز عمل ہے۔ وَإِن تُطِعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کر لو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اب یہاں پہ اس فقرے میں نصیحت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو فلاح ملے گی، اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ اپنی شامت بلاؤ گے۔ وَإِن تُطِعُوهُ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ پکڑے جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف پیغام جو ہے وہ پہنچا دے۔ یہ آیت نمبر 55 جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو غلبے کی اور تمکن کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور خاص طور پر جیسے صحابہ کرام اور اس کے بعد بھی وہ لوگ جو کہ رسول اللہ کی پیروی کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور اس کے بعد کے دور کے لوگ بھی، جو بھی جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو اللہ ان کو حکومت دے گا۔ کون سی خوبیاں؟ دو شرائط ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، نمبر ایک، جو ایمان لائیں گے، نمبر دو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے۔ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے، یعنی وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور با ضرور ان کو زمین میں خلیفہ مقرر کرے گا، خلیفہ بنائے گا۔ کما، جس طرح، استخلفا، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا تھا، اللہ زینہ، ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو اسی طرح زمین میں خلیفہ مقرر کرے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ مقرر کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابق رسولوں اور ان کی امتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اور اس کے پیروکاروں کو دنیا میں لازماً غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غلبے کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں کو غلبہ ملا، اور مکی دور دیکھیں تو مسلمان کتنے پریشان رہتے تھے، مدنی دور میں بھی ہر وقت जो है वो खतरा लगा रहता था कि मुशरिक हमला ना कर दें, तो अंदर भी मुनाफिक यहूदी, तो एक खौफ किसी कैफियत थी ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने ईमान लाने वाले और अमले सवाले करने वालों को खुशखबरी दी है कि अल्लाह ताला उनको जमीन में खिलाफत देगा। जैसे कि पहले जो गुजरी हुई कौमें हैं, पहले गुजरे जो लोग हैं, उनको अल्लाह खलीफा बना चुका है। जैसे बनी इसराइल को फिरौन से अल्लाह ताला ने निजात दी थी, तो ये अल्लाह का तरीका है। तो पहली बात क्या है, खुशखबरी क्या है कि अल्लाह उनको खलीफा मुकर्रर करेगा। दूसरी बात क्या है, वला युमक्किनन्ना लहुम, और मीम काफ नून का मतलब होता है इख्तियार देना, गालिब करना, और अल्लाह ताला उनको जो है वो कुव्वत देगा, इख्तियार देगा। दीनहुमुल्लज़ी, उनके लिए उनके दीन को, इर्तदा लहुम, दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद किया है, तो उनके लिए उनके उस दीन को मजबूत कर देगा। वला युमक्किनन्ना, मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा, उस दीन को कुव्वत देगा। वो दीन अल्लाजी इर्तदा लहुम, वो दीन जो अल्लाह ताला ने इनके हक में पसंद किया है। इर्तदा जो है इसका रूट भी राद वाद वो, राद वाद या राजी होना, पसंद करना। और आप ये पढ़ चुके हैं पीछे कुरान में के रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ताला ने दीन के तौर पर हमारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि दीन के सिवा यहाँ पे किसी और का इक्तदार नहीं होगा इस मुल्क में, जो है वो सिर्फ दीने इस्लाम का इक्तदार होगा। क्योंकि वला युमक्किनन्ना जो है ये बता रहा है कि इस्लाम को कुव्वत नसीब होगी। तो ये दूसरी खूबी है ईमान और अमले सवाले के नतीजे में, पहली जो है वो खिलाफत मिलेगी, नंबर दो जो है वो दीने इस्लाम को कुव्वत मिलेगी, नंबर तीन वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादे खौफिहिम अमना, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अल्लाह ताला अमन से बदल देगा, जरूर बजूर जरूर बदल देगा। देख लें हर जगह नून नून ने ताकीद आया है तीनों बातों में, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदलेगा। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन चीजों का वादा किया, कि आपकी उम्मत को जो है वो जमीन में हुक्मरान और खिलाफत जो है वो अता करेगा, दीन इस्लाम जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इसको गालिब करेगा, मुसलमानों को कुव्वत और शौकत नसीब होगी, और उनके जो दुश्मनों का जो मुसलमानों पर खौफ है वो खत्म हो जाएगा और सुकून में बदल जाएगा। तो और आप देख लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है वो फतेह मक्का हुआ, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और खुलफाए राशिदीन का जो दौर है, और उसके बाद भी तो क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो तरक्की करते चले गए, और मुसलमानों के हिस्से में रूम, शाम, ईरान, मिस्र, दूर तक के इलाके मुसलमानों के हिस्से में जो है वो आए। मुसलमानों ने बड़ी हुक्मरानी की ना। तो फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर भी आप देखिए, तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन इसकी शर्त क्या है, ईमान लाना और अमले सवाले करना। आज आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि शायद ये उस जमाने के लिए थी, और आज के इस दौर में तो मुसलमान जो है वो जवाल पजीर हैं और खौफ की हालत में हैं, हर तरफ गम के परेशानी के बादल जो हैं वो उमड़े चले आ रहे हैं। तो प्यारी बहनों, इसकी असल वजह क्या है कि ये वादा मशरूत है। ऐसा नहीं है कि बस ईमान लाए और फिर जो है वो खिलाफत मिल जाएगी, हुकूमत मिल जाएगी, बल्कि ईमान लाने के साथ अमले सवाले करना। जब भी ईमान मुसलमान लाएंगे जो सच्चा ईमान है और अमले सवाले करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको ये खिलाफत भी देगा और अमन देगा, इस्लाम जो है उसको मजबूती अता करेगा, اور جب بھی مسلمان ایمان میں کمزور ہوں گے، عمل صالح میں کوتاہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار کو اور غلبے کو غلامی میں، ان کے امن کو اور استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دے گا۔ آپ دیکھ لیں انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی کہ جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو آج کی دنیا میں بھی جو ہے ان کی زندگیوں میں امن اور سکون نظر آتا ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی جس جس نے جتنا جتنا بھی جو لوگ بھی جتنا جتنا اس پہ چل رہے ہیں، لیکن اگر بحثیت ایک قوم کے، ایک امت مسلمہ کے مسلمان جو ہیں ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، تو آج بھی یہ جو تین وعدے ہیں اللہ کے یہ سچ ثابت ہوں گے۔ تو لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام، تو بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے، تو آئیے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور امت مسلمہ کے جو حالات ہیں ان کو بدلیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس وہ میری بندگی کریں، یعبدوننی بس میری بندگی، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو آج دیکھ لیں کہ مسلمان اب کس کی بندگی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی، پیئر پریشر، خاندان کے رسم و رواج، یا جیسا دیس ویسا بیس وہیں ڈھل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام کی پتھروں کی پوجا کی تھی، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ پوجا کرتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور آج کے مسلمان میں دوئی پائی جاتی ہے، آج کے مسلمان میں منافقت پائی جاتی ہے، آج کا مسلمان جو ہے وہ جو ہے وہ ڈبل فیس ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان بنیں ایسے سمعنا واطعنا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے بس ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں امتحان ہو رہا ہے لوگوں کا، جو مہلت ملی ہوئی ہے، اگر اس کے بعد بھی لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، امن کفر اباد ازالکا، اور جو اس کے بعد بھی دین کی مخالفت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ پھر جائیں گے کہاں، پھر اللہ کے پاس جب جائیں گے اللہ تو ان کو جو ہے وہ پکڑے گا۔ آیت نمبر 56 جو ہے 56، اس میں علاج بتایا گیا ہے کہ دلوں کو نفاق، خوف، شک جیسے امراض سے کیسے پاک کیا جائے۔ نمبر 1، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نمبر 2، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نمبر 3، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو جب لوگ یہ تین کام کریں گے تو ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، ان کے دلوں سے نفاق، خوف، شک نکل جائے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ لا تحسبن الذين كفروا، لا تحسبن، ہرگز گمان مت کرو، اس غلط فہمی میں مت رہو۔ الذين كفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، معجزینا کہ وہ مغلوب کر دیں گے، وہ عاجز کر دیں گے، فی الارضی زمین میں، لوگوں اس غلط فہمی میں مت رہو کہ کفر کرنے والے زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ وما هم النار، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، ولا بئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو جیسے منافقین تھے اور اسی طرح قریش جو تھے, تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو مسلمانوں کے دل سے ہٹا رہے ہیں کہ یہ منافق, یہ کافر, یہ ان کے بارے میں مت یہ سوچو کہ اللہ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے, وہ دنیا میں بھی میرے قابو میں ہے اور آخرت میں بھی. بہرحال دوزخ جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آیت نمبر 57 میں منافقین, کافر, مشرک اور جن کے دلوں کے اندر شک ہے اور جو کفر کرتے ہیں, جو مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مت سوچو کہ تمہاری چالیں مجھے عاجز کر دیں گی, ایسا نہیں ہوگا, تم میرے اقتدار اور اختیار میں ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیا ہے, وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ دوزخ, وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پیاری بہنوں, یہ آیات جو ہیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ عملی زندگی میں جو ہے وہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے, ایک اللہ کی اطاعت کی جائے اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. سمعنا و اطعنا, یہ ہماری پہچان بن جائے, اور خشیت اور تقویٰ, یعنی دل کے اندر ہماری دلوں کی گہرائیوں میں جو ہے وہ توحید اور آخرت ہو, اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہمارے عملوں میں جو ہے وہ نظر آئیں. اور پھر عمل میں کیا نظر آئے گا کہ پھر آپ نماز تو پڑھیں گے نا, کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان میں خشوع خضوع عاجزی انکساری پیدا کرتی ہے, کبر اور سرکشی سے نکالتی ہے. زکوٰۃ دیں گے تو مال کی محبت دبے گی اور آخرت کی محبت جو ہے وہ ابھرے گی, اور اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ بات یاد رہے گی کہ ہمارے لیے اصل نمونہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. ہمارے معاملات میں اللہ کا رسول ہی ہمارے لیے رہنما ہے. تو پھر کیا ہوگا, رسول ہمارے آگے ہوگا اور اس کی سنت ہمارے آگے ہوگی, اور ہم لوگ جو ہیں وہ رسول کی سنت کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اپنی میں دل یہ چاہتا ہے لیکن پھر اس سے ہم دست بردار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل مسلمان بنائے, ہم سب سے راضی ہو جائے, اور جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.